हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। भगवान कह रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा व्यक्ति को आश्चर्य होगा, भगवान ने 28वें श्लोक में, 27वें श्लोक में और उसके पहले वाले श्लोक में, 26वें श्लोक में अपनी भक्ति के बारे में बताया है और बताया है किस प्रकार से उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति उनके धाम को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि भगवान जो देवता के उपासक हैं उनका ध्यान नहीं रखते और भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के प्रति पक्षपात करता हूँ, सभी की तरफ भगवान बराबर हैं, सभी को पूरा मौका देते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के प्रति उनका सहज स्नेह है। इसको ज़रा तात्पर्य में हम देखते हैं। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपने संतानों में विशेष रुचि लेता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत दानी होते हैं, जगत के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन अपने संतान के प्रति जो उनका भाव होता है वो विशिष्ट होता है। तो ये सत्य बात है, सबके प्रति उनकी समदृष्टि है, सबको समान तरह से दान देते हैं, लोग अन्य लोगों का उपकार करने में लगे रहते हैं, लेकिन जो उनका बेटा है या उनका संतान है, बच्ची है, जो भी है, जब घर आते हैं तो अपने बच्चों से उनका एक विशिष्ट संबंध होता है और इससे उनकी उपकारिता में या सबके प्रति संभावना में कोई दोष नहीं होता है। ये उनके व्यक्तित्व का एक लक्षण है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये स्पष्ट है कि जो लोग, जैसे कि जानवर, वो भगवान का भजन नहीं करते, तो भगवान उनकी भी जीवन के पालन के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और यहाँ तक कि जो लोग भगवान के चरणों में अपराध करते हैं, जो भगवान को निराकार कहते हैं, वो भी भगवान के द्वारा ही वस्तुएं प्राप्त करते हैं, भले ही वो भगवान को निराकार कहते रहें। तो आप देखिए कि जीव को भोग प्रदान करने के लिए, उसको जीवन यापन करने के लिए, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भगवान बिल्कुल सम है, इसमें कोई वो किसी से घृणा नहीं करते। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। तो ये स्पष्ट है कि बादल जो है वैसी जगहों पे भी बारिश करता है जहां पे बारिश की आवश्यकता नहीं है, मतलब समान रूप से बारिश होती है। तो चाहे कोई यज्ञ भी ना करे, जैसे यज्ञ करने से तो बारिश होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो पत्थर पे भी होती है बारिश, तो पत्थर तो कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसी उदाहरण से देखकर समझ में आता है कि भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भगवान सबके प्रति बराबर हैं, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। लीन रहते हैं अर्थात कृष्ण चिंतन में लीन रहते हैं। कृष्ण में लीन होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर देंगे। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। सजीव आध्यात्मवादी का मतलब है लिविंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट, अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं करते, जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मैते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। तो इससे पहले इस वाले सेशन को समझते हैं। जब भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है तो उससे भक्त को भी असीमित सुख मिलता है और भगवान को भी मिलता है। तो इसी कारण से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब कोई जीव भगवान की सेवा करता है, अपितु भगवान को तत्व की दृष्टि से किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रस के आदान प्रदान के लिए वो जीवात्माओं को जागृत करते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो अनंत जीव है जो उनकी प्रेममय सेवा में लगे ही हैं, फिर भी भगवान की इच्छा होती है कि जो जीव उनको भूले हुए हैं, जो जीव उनसे विमुख हैं भौतिक जगत में, उनको भी मौका मिले उनकी सेवा करने का, ताकि उनसे भी रस का आदान प्रदान भगवान श्री कृष्ण कर सकें। तो शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। अशुद्ध अवस्था क्या है? अशुद्ध अवस्था है माया से ग्रस्त अवस्था, अविद्या से ग्रस्त अवस्था जिसमें व्यक्ति सोचता है कि मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं भगवद गीता में भगवान स्वयं ही अर्जुन करत हांक रहे हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। अर्थात मायावादियों के अनुसार जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है तो वो सोचता है वही भगवान है, उसको यही समझ में आ जाता है कि वो भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्म साक्षात्कार में भी गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार जीव अपनी सत्ता अपने व्यक्तित्व को बनाए रखता है और शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की वो सेवा करता है, चिन्मय शरीर में, स्पिरिचुअल बॉडी से कहा जाता है। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। मायावादी दर्शन में बस वो बोलते हैं कि ब्रह्म है और आप भी ब्रह्म हो, और ब्रह्म से ब्रह्म में मिल जाता है, खत्म कहानी, उसके बाद कोई सेवा कुछ नहीं करने की जरूरत है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। आगे भगवान बताएंगे भी क्योंकि कोई भक्त है और उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो भी जाती है, अगले श्लोक में बताएंगे, फिर भी उसको साधु मानो, दिखाता है कि जो कोई अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करता है भगवान का कितना स्पेशल अनुग्रह स्पेशल स्नेह उसके प्रति उमड़ता है। ऐसे तो भगवान सभी जीवों के प्रति स्नेही हैं, लेकिन अगर कोई जीव को ये ट्रेनिंग दे दी जाए या हम इस प्रकार से सीख लें कि कैसे अनन्य भक्ति की जाती है, कृष्ण जो उत्तम भक्ति है, अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कैसे किया जाता है, अगर वो करें तो वो स्पेशल सुविधा मिलेगी जो हमें श्लोक नंबर 30 में भी मालूम चलेगी। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो भगवान कृष्ण की जो कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के बीच में जो संबंध होता है, आदान प्रदान होता है, वो भगवान के स्वरूप शक्ति का अंतर्गत होता है। इसीलिए बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कि वो कतई वो इस भौतिक जगत के शक्ति के द्वारा संपादित नहीं होता है। इसको भगवान ने पहले भी समझाया था, दैवी एष गुणमयी, क्षमा कीजिएगा, महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रित। जो महात्मा है, जो भगवान के श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वो भगवान की दिव्य शक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी की शरण में रहते हैं। थोड़ा सा विश्वराज चक्र ठाकुर जी की कमेंट्री को हम देखेंगे। वो कहते हैं, वो प्रश्न उठाते हैं कि भगवान आप अपने भक्तों को मुक्त कर देते हैं और फिर अपने आप को अपने भक्तों को दे देते हैं, लेकिन अभक्तों को तो नहीं देते। तो क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने भक्तों के प्रति भक्तों का पक्षपात कर रहे हैं, और पक्षपात व्यक्ति करता है जब उसको आकर्षण हो या द्वेष हो। तो भगवान श्लोक में इस बात का खंडन कर रहे हैं, इस श्लोक के द्वारा वो कह रहे हैं नहीं, मैं सबके प्रति बराबर हूँ, ना तो मैं किसी से घृणा करता हूँ और ना किसी का पक्षपात करता हूँ। लेकिन जो भक्त हैं, उसके बाद भगवान कह रहे हैं, जो भक्त भक्ति भक्ति भावना से अनन्य भक्ति से मेरा भजन करते हैं तो वो मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें भी स्थित हूँ। अब ये विचार करना चाहिए कि भगवान इस बात को जब बोल रहे हैं तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही पूरा जो ब्रह्मांड है वो भगवान में ही है और भगवान इस पूरे ब्रह्मांड में है। तो इस वाक्य का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, जितना आसक्त होता है, उसी प्रकार से भगवान भी उस भक्त के प्रति आसक्त होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की पत्नियाँ बहुत आसक्त हैं भगवान श्री कृष्ण से पति के रूप में, तो भगवान भी ऐसा आदान प्रदान करते हैं कि उनको लगता है कि भगवान या कृष्ण जो हैं वो पूरी तरह से मुझको ही प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से है। और इसीलिए यहाँ पे ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहं में हम वाला श्लोक को उद्धृत किया गया है। तो भगवान को एक कल्प वृक्ष के से उनकी उपमा देना ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि एक कल्प वृक्ष वो वस्तुएं देता है व्यक्तियों को जो वो चाहते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो लोग उस पेड़ की शरण में जाते हैं वो बिना फल की इच्छा के, ध्यान दीजिएगा, बिना फल की इच्छा के उस पेड़ के शरण में नहीं जाते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग कल्प वृक्ष के शरण में जाते हैं वो बिना फल की इच्छा के उस कल्प वृक्ष की शरण में नहीं जाते, और वो कल्प वृक्ष भी ऐसे लोग उन लोगों की उनको शरण उन जो लोग उनके शरण में आते हैं कल्प वृक्ष की उनके प्रति आसक्त नहीं होता। तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त भगवान से कुछ फल नहीं चाहते हैं, बल्कि बस प्रेममय संबंध के कारण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इस कारण से भले ही भगवान सबके प्रति सम हैं, लेकिन उन लोगों के प्रति भगवान द्वेष रखते हैं जो उनके भक्तों के शत्रु हैं, और साथ साथ भगवान अपने भक्तों के शत्रुओं को अपने हाथ से ही मारते हैं, जैसा भगवान प्रहलाद को कहते हैं, प्रहरादयाद्रुहे धनिष्येपि वरोर्जितम्, कि मैं हिरण्यकश्यप को तुरंत मार दूंगा बावजूद इसके कि उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, जब वो प्रहलाद के प्रति द्वेष करेगा, द्रोह करेगा। तो कुछ लोगों का ऐसा मत है कि शब्द जो तू आता है ये दूसरे भगवान की दूसरी मंशा को प्रस्तुत करता है, जिसका अर्थ है कि मैं सबके प्रति बराबर हूं लेकिन फिर भी मैं अपने भक्तों के प्रति पक्षपात करता हूं। तो इसका अर्थ है कि भगवान का कोई पूर्वाग्रह है जिसे कि प्रेम कहा जाता है भक्तों के प्रति, लेकिन उसको वो समझाते हैं कि ये भगवान में कोई दोष नहीं है अपितु भगवान का ये एक गहना है। तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, यानी भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं, ज्ञानी वत्सल नहीं कहे जाते और कर्मी वत्सल नहीं कहे जाते। तो भगवान का भक्त वात्सल्य जो है वो भगवान का गुण है, न कि भगवान का दोष। एग्जाम्पल और दिया जा रहा है यहाँ पे, आचार्य देते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने सेवकों के प्रति अधिक प्रेम होता है और अन्य लोगों के प्रति उतना नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान को अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम होता है लेकिन शिव जी या दुर्गा जी के भक्तों के प्रति प्रेम नहीं होता है, अफेक्शन नहीं होता है। तो ये भगवान के अंदर ये एक दोनों ही गुण का समावेश है। ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें परस्पर विरोधी गुण समन्वय कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो भगवान सम भी हैं सबके प्रति और साथ साथ भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती या प्रेमी भी हैं, वात्सल्य से युक्त भी हैं।